सब लोग बात कर रहे थे और बात करने से वहाँ का सारा वातावरण बड़ा कोलाहलमय हो गया था। अब उसके बाद इस वातावरण में अकस्मात क्या परिवर्तन होता है, ये मध्यम विश्राम के बाद की कथा कही जाएगी आगे। 40 मिनट के मध्यम विश्राम के बाद कथा कही जाएगी। राम राघव राम राम। वाल्मीकि जी महाराज की रामायण है, ये जीती जागती रामायण है। इसका वर्णन होता है वो सजीव वर्णन है, एकदम सजीव। सारे बानर खाना पीना छोड़ करके समुद्र के किनारे बैठ गए हैं। और उन्होंने विचार किया कि अब अपने को यही रहना है। इतने में ही जब इनकी आवाज ज्यादा आई तो पर्वत के अंदर संपाति नाम के एक गिद्ध और रहते थे। उन संपाति ने आवाज सुनी, आज ये इतनी बड़ी आवाज कैसे हो रही, कोलाहल कैसे हो रहा है। संपाति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। संपाति जी ने अपने गुफा में से बाहर आकर के सबको देखा और देख करके कहा, ओहो आज तो मेरा भाग्य खुल गया है, मैं जो चाहता था वो चीज मुझे मिल गई है। कई दिनों से भूखा था तो आज मुझे कुछ खाने को मिला। अंगद जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जब आदमी पर विपत्ति आती है तो एक तरफ से नहीं आती, वो कई तरफ से आती है। कहा कि देखो पहले तो हमारे पर और विपत्ति आई और विपत्ति आई, और अब देखो कैसी विपत्ति आई है। सीता जी हमको नहीं मिली, इसका मतलब हमको यमराज जी का लोक मिलने वाला है। राम जी का कार्य हमने किया नहीं, सुग्रीव का काम किया नहीं, और हम में से तो वो जटायु जी बड़े अच्छे हैं जिन्होंने कम से कम सीता जी के दर्शन किए, सीता जी के लिए प्राण त्याग किया। जटायु जी बड़े अच्छे, वो पक्षी योनि में हो गए तो क्या हुआ। भगवान के दर्शन करने के बाद कोई प्राणी किसी भी योनि का हो वो पवित्र हो जाता है। तो भगवान के दर्शन तो हमने भी के लिए पर अधूरे किए, अधूरे। हमने तो केवल राम जी को रोते हुए ही देखा है, लेकिन जटायु जी ने रोते हुए भी देखा तो हंसते हुए भी देखा, तो राम को भी देखा, तो सीता को भी देखा, तो सर्वांग दर्शन किए। अब भाई क्या करें, हम तो बहुत थक गए, इसलिए अब जो है हम तो यही चाहते हैं कि शरीर को यहाँ सागर के किनारे अनशन करके छोड़ दे, क्योंकि हमको मालूम है कि राम जी ने जिस बाण से बाली को मारा है उस बाण से वो हमको भी मारेंगे और बचने वाले हैं नहीं। यही ठीक है। देखो हनुमान जी एक एक के वरदान से कितने प्राणी मारे गए। दशरथ जी मर गए, 14,000 खरदूषण के सैनिक मर गए, खरदूषण मर गए, ऐसे करके कहा देखो जटायु जी मर गए, सब मर गए। उस समय में गीदराज ने ये बात सुनी। गीदराज पहले तो बड़ा क्रोध में था संपाति, अब बोलता है कि अरे भाई आप लोगों में से मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय छोटे भाई जटायु का नाम क्यों लिया जाता है, उस जटायु का वध किसने किया है। वो जटायु जनस्थान में रहता था, उसका रावण के साथ क्यों युद्ध हुआ है, मैं आप लोगों से बात सुनना चाहता हूँ। आप लोग सब आकर के मुझे इस पर्वत की गुफा से बाहर निकालो और आप लोगों के बीच में बैठना चाहता हूँ और जटायु की सारी बात सुनना चाहता हूँ। आप तो ये भी कहते हो कि राम जी के पिता दशरथ का वो मित्र था, तो भाई ये सब बातें याद तो मुझे भी है, कि दशरथ का वो मित्र था, दशरथ हमारे मित्र थे, बड़े मित्र थे, पर ये राम जो दशरथ का बेटा आप लोग बताते हो, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। मेरे पांख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता हूँ, गुफा के बाहर आ नहीं सकता हूँ, आप लोग मुझे इस विषय में कुछ बताइए। तब बंदरों ने कहा कि देखो, इसको बाहर निकालना अच्छा रहेगा, क्यों कि अनशन करते हुए मरेंगे तो भूख प्यास में बहुत लंबा दुख पाना पड़ेगा और मर जाएंगे, और ये हमको खाता रहेगा तो बाबा जल्दी मौत हो जाएगी, पिंड छूट जाएगा, चलो इसको नीचे ले आओ। तब सब के सब बंदरों ने उसको नीचे ला करके और संपत्ति को बैठाया, और बैठाने के बाद में अब आपस में बात हुई। उस समय में अंगद जी ने कहा कि देखो, एक रीछ राज बानरेंद्र, बांदरों के राजा थे रिक्ष राज, उनके दो बेटा थे, एक बाली और एक सुग्रीव। बाली बड़े थे, बाली का लड़का मैं हूँ, और छोटे थे सुग्रीव, सुग्रीव हमारे राजा। इधर दशरथ जी के चार लड़का हुए और उनमें राम सबसे बड़े। राम जी का विवाह हुआ और राम जी को वे राजा बनाना चाहते थे, युवराज पद देना चाहते थे, परंतु कैकेयी ने वरदान मांग लिया कि भाई मेरे बेटे को राजा बनाओ, राम जी को वन में निकाल दो। तो वो बड़े प्रेम से राम जी वन में आ गए और वन में आकर के और रहने लगे। साथ में इनके छोटा भाई भी है और साथ में इनके पत्नी भी है। ये तीनों आए तो फिर वहां जटायु ने इनकी बड़ी सेवा की। ये जनस्थान में आए तब इधर वो रावण आया, रावण ने सीता का हरण किया, तो आपके छोटे भाई जटायु ने ऐसा युद्ध किया कि उसके रथ को तोड़ दिया, उसके धनुष्मान को भी तोड़ दिया और उसको भी खूब नौश दिया। लेकिन आखिर वो बुड्ढा था, उसके पास तलवार थी, उससे उसने पांख काट दी और वो बेचारा मर गया। और उसके बाद राम जी सीता की खोज करते करते सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव की और राम जी की मित्रता हो गई। फिर सुग्रीव के कहने से राम जी ने एक बाण से मेरे बाप को मार दिया और वहां फिर मेरा चाचा सुग्रीव राजगद्दी पर बैठ गया और मुझे युवराज बना दिया। अब चारों दिशाओं में अनेक बानर गए सीता की खोज करने के लिए, तो इन बांदरों का सेनापति मुझे बनाया है और हमने खूब ढूंढा है, यहाँ तक तो हमको सीता कहीं मिली नहीं है। अब हम लोग सोचते हैं कि एक महीने की अवधि हमको दी थी वो तो खत्म हो गई और हमको नाहक मरना पड़ेगा, इसलिए हम सागर के किनारे मरना चाहते थे। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप हमको खा पी करके आप अपनी भूख मिटा लो और हमको मार मूर के खत्म कर दो। गिदराज जी संपाति रोने लग गए, संपाति जटायु का बड़ा भाई था, रोने लग गए, कह छोटे छोटे बंदर है बेचारे, इनको एक महीना का समय मिला, नहीं खोज पाए, बेचारे मर जाएंगे, और मेरी जटायु की कथा ये बोलते हैं, ये राम जी का काम करने चले हैं। ओहो, संपाति के मन में बड़ा प्रेम पैदा हुआ और भाई जैसे बाप है वो बेटे के सामने कभी विवल हो जाए, रोने लग जाए, ऐसे वो सब आसपा है, वो रोने लग गया संपाति, और रोते हुए सबको कहने लगा, अरे बांदरों आप लोग मरने का विचार मत करो, देखो आप लोग मरोगे, मुझ बुड्ढे जटायु को, मुझ बुड्ढे संपाति को बड़ा दुख होगा, आप लोगों ने जटायु की कथा कही है, मेरे मन में आप लोगों के प्रति स्नेह पैदा हुआ है। अच्छा, आपने जिस रावण के लिए कहा है, क्या बताऊं, मेरे एक तो पांख नहीं है, रेक में बुड्ढा हो गया हूं, लेकिन यदि आज मेरे में शक्ति होती तो आप सब बच्चों को मैं यह रख करके और अकेला ही जाकर के रावण को मार लाता। अरे बच्चों, आपको पता नहीं, आप तो कल के पैदा हुए हो, मैं तो बहुत पुराना हूँ। जिस समय में इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था उस समय में मैं बहुत जवान था, तो मैं और जटायु दोनों जवान थे। एक बार जाने हम दोनों के दिमाग में क्या कुराफात सूझी, हमने कहा कि चलो उड़ते उड़ते सूरज के पास चलते हैं। हम दोनों उड़ते 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 सूरज के वहां चले गए। अब जाने लगे तो हमारा शरीर जलने लगा, तो जटायु ने कहा कि भैया मैं तो अब मर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, तो मेरे छाया के नीचे आ जा। तो ऊपर तो मैं था, नीचे मैंने उसको ऊपर से मैंने इसको छाया कर दी, नीचे छाया में वो जटायु था। पर वो घबरा गया, इधर मैं भी घबरा गया, तो हम दोनों धड़ाम से गिर गए। गिरने के बाद मैं तो यहाँ विंध्याचल पर्वत पर गिरा, और मुझे तो लोगों से बहुत बाद में मालूम चला कि वो जनस्थान में जाकर गिर गया, दंडकारण्य में वो गिर गया। हम दोनों को तो उसके बाद कभी आपस में मिलने का मौका ही नहीं मिला। अंगद जी ने कहा कि अच्छा जटायु जी आपके भाई हैं, तो आख्या ही यदि जानासी निलयम तस्य राक्षसः। तो देखो गीध की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, इसलिए आप बताओ कि राक्षस कहाँ हो सकता है, राक्षस राज रावण, इसके विषय में हमको बताओ, क्योंकि नजदीक दूर इन सब चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप गीत राज के बड़े भाई हो, आते हो आपको ये बात बतानी पड़ेगी। तो संपाति कहने लगे कि देखो अब मेरे पांख हैं, वो पांख तो मेरे जल गए, शरीर से पूरा आजकल दिखता नहीं, बुढ़ा और हो गया। बुढ़ापे में एक तो आंख खराब होती है, कान भी खराब होते हैं, हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, तो इस बुढ़ापे के अंदर पूरा दिखता भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा, मैं देख रहा हूं। वरुण लोक में सीता नहीं है, विष्णु लोक में सीता नहीं है, देवलोक में सीता नहीं है, और जहां देवताओं के यहां अमृत रखा हुआ है उस अमृत को भी मैं देख रहा हूं, सीता नहीं है। यदि ये सब बातें पहले होती तो मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। देखो आपकी ये सीता है, रावण यहां से ले जा रहा था, और उस समय वो राम राम लक्ष्मण ऐसे जोर से चिल्ला रही थी, वो आभूषण फेंक रही थी और अपने कपड़े का अंश भी वो फेंक रही थी। वो रावण की गोद में ऐसा मालूम दे रही थी जैसे कोई बदलों के बीच में बिजली चमकती हो। ये मैंने जाना है। मैं उस राक्षस का घर बताता हूं, उस राक्षस का कुल भी बताता हूं। देखो विश्रवा का एक बेटा है, वो रावण विश्रवा का बेटा है, और कुबेर का छोटा भाई है, वो लंका में है। इस समय में वो लंका में ही है, लंका यहां से 100 योजन की दूरी पर है। लंका के अंदर बड़े अच्छे अच्छे महल है, लंका के चारों ओर बड़ी भारी खाई खुदी हुई है, लंका के बहुत ऊंचे परकोटे हैं जहां चढ़ना हर किसी के संभवता की बात नहीं है, हर किसी के संभव नहीं है। सीता पीला वस्त्र पहनी हुई है, रेशमी वस्त्र है। सीता रावण के अंतःपुर में राक्षसी के द्वारा सुरक्षित है, सीता मरी नहीं है, और वो जनक दुलारी सीता उसको आप जरूर प्राप्त कर लोगे। बस ये 100 योजन दूरी का सागर है, इसको पार करना है, जल्दी पार करो। बहुत सी बातें मैं ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूं, आप लोग अब जल्दी करो। देखो इस आकाश के अंदर पहले तो ये मामूली जीव जंतु उड़ते हैं, उनका स्थान होता है, उसके बाद ये कौवे वगैरह उड़ते हैं, उनका स्थान है, उसके बाद वृक्षों के फल वगैरह खाते हैं, उनका स्थान होता है, उसके बाद क्रौंच पक्षियों का स्थान होता है, उसके बाद गीदों का स्थान होता है, उसके ऊपर हंसों का स्थान होता है, और उसके बाद गरुड़ों का स्थान होता है, सबसे जो ऊंचा स्थान होता है गरुड़ का, बहुत ऊंचा स्थान, वो जब देखते हैं तो उनको अपनी दृष्टि से वो चीज नजदीकता से मालूम देती है। मैं यहाँ बैठा बैठा देख रहा हूँ रावणम जानकीम तथा, लंका को देख रहा हूँ, रावण को देख रहा हूँ और सीता को देख रहा हूँ। हमारे पास नेत्र बल बहुत बड़ी शक्ति होती है और हम लोग 100 योजन की दूरी तक का वस्तु पदार्थ देख लेते हैं और वृक्षों के पीछे और वृक्षों की जड़ में रहने वाली चीजें भी हम लोग देख लिया करते हैं। आप लोग जल्दी करो, समुद्र का लंघन करो और समुद्र लंघन करके आप सीता को प्राप्त करो। तब जामवंत जी ने संपाति से पूछा कि आपने कब रावण को ले जाते हुए देखा था, आपने राम लक्ष्मण ये बात कब सुनी थी और आपने रावण का स्वरूप देखा हो तो वैसा हमको बताइए, क्योंकि दशरथ नंदन राम के बाणों के सामने इतना बड़ा साहस करने का काम राक्षस राज रावण ने किया है तो उसका फल भी तो उसको भोगना ही पड़ेगा। उसने इतना विचार नहीं किया कि राम मुझे क्या कहेंगे, राम मुझे अपने बाणों से समझाएंगे तो मेरे पास क्या उत्तर होगा। संपाति ने आश्वासन देते हुए कहा कि देखो मैंने कैसे सुना है वो सुनो आप। मेरा एक बेटा है सुपार्श्व, मैं कई दिनों से भूखा था, ये सुपार्श्व मेरा बेटा कभी कभी मुझे भोजन दे देता था, उस भोजन से मैं कई दिन निकाल लेता था। एक बार की बात है, मैं बहुत दिनों से भूखा था, सुपार्श्व मेरे पास आया, मुझे पूछा कि तात क्या आपका भोजन समाप्त हो गया, तो मैं अभी भोजन लेके आता हूँ। सुपार्श्व मेरे बिल से उड़ा और बिल से उड़ करके महेंद्र पर्वत पर जाकर उसने अपना मुंह यूं चोंच से उस चूस को खुला कर दिया। अब वो आकाश के अंदर चोंच ली हुई और वो जोर जोर से श्वास लेने लगा। उसके श्वास लेने से समुद्र के अंदर रहने वाले जानवर थे वो फड़फड़ाने लगे। उस समय में एक पुरुष स्त्री को लेकर के जा रहा था तो सुपार्श्व ने मुझे बताया कि पिताजी, वो जब वो उस स्त्री को लेकर के आ रहा था तो मैंने देखा कि कोई बदल आ रहा है वायु के वेग से, इसलिए मैंने मुंह फाड़ करके उसके सामने खड़ा रहा, परंतु थोड़ी देर में वो राक्षस स्वयं दिखाई दिया, रावण, उसके साथ में सीता थी। मैंने सोचा कि बहुत दिनों के बाद भोजन मेरे पिता को मिल रहा है, आते हुए उस राक्षस को और इस स्त्री को मैं खा लूंगा। तो उस समय मैंने अपनी चोंच को और बढ़ा लिया, शक्ति को और संचित किया, पास में आने दो, पास में आने दो, परंतु वो राक्षस आया, थोड़ा पास में आकर मेरे पुत्र के सामने वो हाथ जोड़ने लग गया और कहने लगा कि भैया मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कोई भी गलती हो तो आप माफ करो, मुझे बहुत जल्दी जाना है। वो हाथ जोड़ने लग गया तो भाई देखो, हे बांदरों, तुम जानते ही हो कि अपने घर में कोई अतिथि आ जाए, चाहे वो गुण ही नहीं हो, चाहे उसमें कोई गुण न हो, पर घर में जो अतिथि आता है उसका तो सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी कह दिया अच्छी बात है भाई, आप जाओ। तो मैंने जाने दिया और उसी समय में सुपार्श्व के सामने कई आ गए, सिद्ध वगैरह सिद्ध है और जो है गंधर्व है, ये लोग आए और ये आकर के मुझे कहने लगे कि वाह वाह सुपार्श्व, तुमने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, हम सब देवताओं का काम बन गया, ये राक्षस सीता को लेकर चला गया, हम निहाल हो गए, हम निहाल हो गए, ऐसे ऐसे वो बोलने लगे। तो मेरे बेटे ने आकर ये सब घटना सुनाई, इस कारण से मुझे पता है कि ये रावण सीता को लेकर के गया है। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग कोई चिंता मत करो, ये राक्षस राज राम, ये राक्षस राज रावण राम के सामने टिकने वाला नहीं है। राम लक्ष्मण के तीखे बाण इसके शरीर में जाएंगे और निश्चित रूप से मरेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब भाई मैं अपने भाई को जल देना चाहता हूँ। तब जो है जल दिया, और जल देने के बाद संपाति ने कहा कि देखो भाई, हे बांदरो, आफत दुनिया में सबके साथ आती है, मेरी भी आफत आई थी, क्योंकि मैं सूर्य के वहां पर पहुंचा। अब सूर्य ने हमको जलाया तो भाई हम दोनों अलग अलग दिशा में पड़ गए, तो मैं विंध्याचल पर्वत पर आकर गिर गया। यहां पर मुझे पता चला कि यहाँ निशाकर नाम के एक ऋषि रहते हैं, चंद्रमा नाम के एक ऋषि रहते हैं, और वो ऋषि सब प्रकार की उत्तम उत्तम औषध देते हैं। तो मैं जैसे तैसे गुड़कता 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 और ऐसे सांस खाता धीरे धीरे बैठते बैठते उसका आश्रम दूर वहां पहुंच गया। वो ऋषि गए हुए थे स्नान करने, फिर वो मेरे पास वो उधर से आए तो मैं उनके पास में गया, और पास में जाकर के मैंने कहा कि देखो महाराज, मेरे तो सब पंख जल गए, मैं तो एकदम जलमरा हो गया, अजला हो गया, अब आप मुझे बचाइए। तो उस ऋषि ने मुझे देख करके कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पंख जल गए सो तो जल गए हैं, अब इसका तो कोई उपाय नहीं है, और इसका उपाय एक ही हो सकता है, ज्येष्ठो अवितस्त्वं संपाते जटायुर अनुजस्तव। पहले तो मुझसे ये पूछा कि तुम्हारे ये कैसे हुआ, तब जो है मैंने उनको सारी बात बताई, और बात बताने के बाद जब उन्होंने सुनी तब कहा कि देखो, तुम्हारे ये वापिस पंख आ जाएंगे और तुम्हारी शक्ति भी तुमको मिल जाएगी, तुम्हारे नेत्र भी काम करने लग जाएंगे, सब काम करने लग जाएंगे, पर अभी काम नहीं करेंगे। ये त्रेता युग में जब महाराज दशरथ होंगे अयोध्या के राजा, तब उनके राम नाम का लड़का होगा, वो जंगल में अपनी पत्नी और भाई के साथ जाएगा। उस समय में रावण नाम का राक्षस उनकी पत्नी का हरण करेगा, और वो सीता की खोज के लिए जिन बंदरों को भेजेगा, और वे बंदर जब तुमको मिलेंगे तब तुम्हारे ये पांख वगैरह सब जो है सब तुम्हारे जो है ये वापिस आ जाएंगे। परमानंद च वैदेह ज्ञात्वा दासस्य वासवः। और सीता के लिए हम एक बात और बताते हैं, सीता राक्षस राज रावण के घर में रहकर कभी भोजन नहीं करेगी तो वो मर न जाए, इसलिए देवता लोग आकर उसको ऐसी खीर वगैरह जिमा देंगे, भोजन करा देंगे कि उसको भूखी नहीं लगेगी, इसलिए सीता जीवित रहेगी। और उसके बाद भाई जब वो बानर लोग आएंगे तब जो है तुम उनको रास्ता बता देना, रावण के विषय में तुम बता देना, तुम्हारे पंख निकली आएंगे। इस प्रकार से वो बोल रहा था तो बोलते बोलते गए, ये देखो मेरे पंख आ गए, ये पंख आ गए। अब उसने पंख फैलाए, और पंख फैलाने के बाद में जो है फिर वो उड़ने लगा, और उड़ने उड़ने लगा तो भाई सब बंदर भी बड़े प्रसन्न हो गए। तो निशाकरस्य राजर्षे, उस निशाकर राजा की कृपा से, उस निशाकर राजर्षि की कृपा से, निशाकरस्य राजर्षे प्रसादाद अमितौजस आदित्य रश्मि निर्दग्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितौ। ये तो भाई मेरी जवानी की बात थी, और बुढ़ापे के अंदर मुझे ये सब शक्ति मिल गई है। अब आप लोग समुद्र को पार करो, समुद्र को पार करके आप लोग जो है आराम से रावण के वहां पर पहुंच जाओ, सीता की खोज कर लो, और मैं मेरे स्थान पर जाता हूँ। लेकिन इतना मैं तुमको बता देता हूँ कि रावण लंका में है और सीता जीवित है, और आज की तारीख में और अभी के समय में सीता पूर्णतः स्वस्थ है। इस प्रकार से गीदराज तो चला गया अपनी गुफा में, सब बानर समुद्र के किनारे आए, समुद्र के किनारे आकर उन्होंने विचार किया अब अपने को क्या करना चाहिए, कथम कार्यम। तो भाई उस समय अंगद ने कहा अब सो योजन भाई इसको पार करना है, आप बहुत बड़े बड़े महारथी लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, अब देखो अपने को रावण का रास्ता भी बता दिया, ज्यादा घूमने की कोई बात भी नहीं, सीता जीवित है ये समाचार भी बता दिया, परंतु जितने अपने लोग आए हैं ना उनमें से नहीं किसी को मालूम है, ये संपाति ने बताया है और संपाति को राम जी ने कोई आज्ञा नहीं दी है, सुग्रीव ने आज्ञा नहीं दी है, हम लोग किसी के कहने से सीधा कैसे मान ले, हमारा काम तो तभी होगा जब वहां पहुंचे। तो भाई अब अपने में से सोच लो कौन कैसे जा सकता है और कौन कितना सागर पार कर सकता है, बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है आप परम महावीर हो, कोई शायद होगा जो सागर को लांग न सके, आप सब सागर को लांगने में समर्थ हो, पर वहां सबके जाने की जरूरत नहीं है, अपने में से एक जना जाएगा और जाकर के बता दे। अब देखो यदि हम लोग रावण को देखे आएंगे, सीता को देखे आएंगे, उसके बाद राम जी को जाकर कहेंगे तो शायद राम जी हमको महीने की अवधि के बार बाद भी जो है सुग्रीव से माफी करवा देंगे। लेकिन अब अपने को एक जगह मिल गई, आप सब लोग विचार करके बताओ, ऐसा ये संकट का समय आप बताओ क्या करना चाहिए। तब देख करके विचार करके सबसे पहले गज बोले, गज ने कहा कि भाई मैं 10 योजन तो जा सकता हूँ, आगे मैं नहीं जा सकता। तो गवाक्ष ने कहा कि मैं 20 योजन, शरभ ने कहा कि मैं 30 योजन, ऋषभ ने कहा कि मैं 40 योजन और गंधमादन ने कहा कि मैं 50 योजन, महेंद्र ने कहा कि मैं 60 योजन, द्विविद ने कहा कि मैं 70 योजन, सुषेण ने कहा कि मैं 80 योजन जा सकता हूँ। अब 80 की बोली 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 गई तो 80 के बाद सबकी बोली बंद हो गई। तब बूढ़े वृद्ध नहीं वृद्ध तमह है, सबसे बूढ़े जामवंत जी वो खड़े होकर कहने लगे सुनो भाई हमारी भी बात सुनो, क्या बताएं हम बच्चों के बीच में बूढ़े लोग क्या बात करें अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बता दें कि हम पहले भगवान विष्णु ने जब त्रिविक्रम रूप बनाया था और महाराज बलि को अपने बस में कर लिया था, उस समय हम भरपूर जवानी में थे और हमने वहां सारी पृथ्वी के ऊपर डंका बजा दिया कि महाराज विष्णु की भगवान विष्णु की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। लोगों ने पूछा कि आज जयकार कैसे करते हो, हमने कहा कि आज महाराज बलि को जीत लिया गया है, विष्णु भगवान ने जीत लिया है, त्रिविक्रम भगवान की हमने बहुत जय जयकार की थी, सारी पृथ्वी पर हम कितनी बार घूमे कुछ पता ही नहीं, खूब घूमे चक्कर लगाए, जवानी थी। अब भाई बहुत बुढ़े हो गए, कहां वो सतयुग की बात और कहां अब ये, कहां भाई अब ये त्रेता युग की बात, बहुत बड़ा अंतर हो गया, तो हम ज्यादा तो नहीं जा सकते, हम 90 योजन जा सकते हैं। अब अंगद ने कहा देखो भाई आप जामवंत जी बड़े बूढ़े हो, आपने 90 योजन के लिए कहा है, लेकिन देखिए मैं आपकी शक्ति की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए आपसे हम एक बात बोलते हैं कि आप बूढ़े हो आप रहने दीजिए, हम 100 योजन तो हम चले जाते हैं, हम 100 योजन चले जाएंगे, आप अपने यहाँ आपको हम बूढ़े आदमी को रहते हैं, हम बच्चे लोग थोड़ा ही कोई आराम करेंगे, आप आराम करो मैं 100 योजन में चला जाता हूँ। जामवंत जी का नहीं नहीं आपके अंदर तो 1,00,000 योजन जाने की शक्ति है। अंगद ने कहा कि वापस आने की शक्ति का ज्ञान नहीं है मुझे, आ भी सकता हूँ नहीं भी आऊ जा तो सकता हूँ मैं। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम तो 1,00,000 योजन जा सकते होंगे, परंतु आपको हम नहीं भेजेंगे क्योंकि आप हमारे सेवक हो, आप हमारे स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं और ये काम सेवकों का होता है। प्रेष्य प्लवग सत्तम, हम लोग प्रेष्य हैं, प्रेष्य माने सेवक हैं, आप आदेश दो हम पालन करने वाले हैं, इसलिए जिस प्रकार से परिवार के अंदर लोग स्त्री की सुरक्षा करते हैं, स्त्री को कभी कष्ट में देखना नहीं चाहते और स्त्री के आंखों में आंसू देखना नहीं चाहते, स्त्री को कोई तकलीफ न हो ऐसा सब सत परिवार विचार करता है, ऐसे हम लोग भी आपको कोई कष्ट देना नहीं चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि आप जो है और यही रहो, अपने में किसी और कोई विचार करें। अंगद ने कहा कि अब आप मुझे तो जाने नहीं देते, दूसरा कोई आपके तैयार हुआ नहीं तो अपने तो वही रहे। सारे उम्र जो है घाड़ी का चक्कर लगाया बैल ने और रहा वही का, 100 कोस जाने पर भी वही का वही रहा, तो अब अपने को तो यहाँ समुद्र के किनारे मर जाना चाहिए, वो वापिस प्रायोगेश ठीक लगता है। तो कह रहे वो संपाति सुनेगा तो क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, अभी खा जाएगा। और उसने कहा था ना कि तुम सीता को प्राप्त कर लोगे, कहाँ कर रहे हैं। अब उसने कहा था वो जाने, लेकिन अपने को तो कोई बात जो है समझ में आई नहीं। तब फिर जो है जामवंत जी ने कहा कि अरे अंगद अंगद सुनो, हमको एक बंदर याद आ गया, हम तुमको बताते हैं, ठहरो। हाँ देखो उसको तुमने याद